الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. یہ اس سے پہلے جو آیات گزری اس میں خاص طور پر قیامت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. قیامت اور آخرت کا تصور ایسا تصور ہے کہ وہ آدمی کو مطمئن کر سکتا ہے اور سب سے زیادہ آدمی پر اثر ڈالنے والی چیز ہے. آخرت کا تصور جب کمزور ہوتا ہے تو آدمی کا عمل بھی کمزور ہوتا ہے، اور آخرت کا تصور قوی ہوتا ہے تو عمل بھی قوی ہوتا ہے. اس لیے کہ آدمی اپنے نفع و ضرر کو دیکھتا ہے، اور ساری زندگی یہ انسان کی جو چہل پہل سب نظر آ رہی ہے، یہ سب حقیقت میں نفع و ضرر پر مبنی ہے. کسی کو آپ کسی حالت میں دیکھیں تو آپ اس کو غور کریں گے تو آپ نتیجے پہنچیں گے کہ اس میں نفع یا ضرر پوشیدہ ہے. ضرر سے بچنا اور نفع کا حاصل کرنا، نفع کی بھی شکلیں بہت ہیں. نفع یہ بھی ہے کہ دل کو خوشی ہو، نفع یہ بھی ہے کہ آدمی کو لطف آئے، نفع یہ بھی ہے کہ آدمی کو رزق اچھا حاصل ہو. بہت نفع کی بہت شکلیں ہیں، اور اسی کی انسان اسی کے فکر میں رہتا ہے. اور اس سے ضرر تکلیف پہنچنا، تکلیف پہنچنے سے آدمی گھبراتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تکلیف بھی بہت سے قسم میں ہے، اور سزا تکلیف جو انسان کو خوف ہوتا ہے وہ موت کا ہے. موت کا جب خوف ہوتا ہے تو اس کے بعد اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ موت کے بعد کا جو معاملہ ہے، اگر وہ موت کی طرح اس کو بھی آدمی محسوس کرے یا موت کے ساتھ اس کو تصور میں لائے تو پھر آدمی گناہ سے واقعی بچے گا اور گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے اس عمل سے ہم کو اتنا نقصان ہوگا، ہم کو اتنی تکلیف ہوگی، اتنی بڑی مصیبت آئے گی، تو ہرگز نہیں کرے گا. کوئی صاحب عقل تو کرے ہی گا نہیں، مجنون کرے تو کرے. تو سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ایمان کی کمزوری کا، कि आखिरत पर ईमान आमतौर पर बहुत कमजोर होता है, इसीलिए नेकी की तरफ रगबत ज्यादा नहीं होती और बुराई और बुराई से बचने का शौक या जज्बा नहीं होता। लेकिन सोचता है देखा जाएगा, उसको जो कह देता है देखा जाएगा, लेकिन कोई दुनियावी नुकसान उसके सामने हो, खतरा हो, तो उसकी वह अहमियत को तस्लीम करता है, उसके लिए मेहनत करता है। मसलन बीमार होता है, अगर बीमारी बहुत खतरनाक है तो उसकी बड़ी फिक्र करेगा, वो उसके लिए जितनी जो भी मेहनत कर सकता है, जो भी कोशिश करता है करेगा, और इसलिए कि वो डरता है कि ये बीमारी जो है कहीं मौत तक न ले जाए। मौत का खौफ उसको बचाता है, तो मौत का खौफ एक तो बचाता है इंसान को बहुत सी उन बुराइयों से और बहुत सी बातों से, और दूसरे कोई भी खतरा पेश आने वाला उसे बचाता है। आखिरत को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है और उसका तसव्वुर ऐसा अल्लाह ने रखा है कि अगर वो सही तसव्वुर आदमी में पैदा हो जाए, आखिरत पर ही उसका यकीन हो जाए, ईमान हो जाए, तो फिर वो गुनाह नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके सामने वो हौलनाक मंजर सामने आ जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इसमें कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन बातों को पेश किया है उसमें दो बातें, उसमें दो पहलू खास तौर पर नजर आते हैं। एक तो ये कि सुनने वाले की नफ्सियात और उसके जहनी और उसकी कल्बी कैफियत को सामने रखकर कहा है, उसके मुताबिक कि फौरन जाकर ठीक निशाने पर वो चीज लगे और उसका असर हो। इसीलिए कुरान मजीद का बेइंतहा असर पड़ा उन लोगों पर कि जो कुरान मजीद को समझकर उन्होंने सुना या पढ़ा। और एक तो ये कि अल्लाह ताला ने मुखातब की नफ्सियात का लिहाज रखा, और दूसरे ये कि अल्लाह ताला ने नफ़ व ज़रर को भी इसे बुनियाद बनाया है कि देखो तुम अगर नेक अमल करोगे तुम्हें ये फ़ायदा होगा और बुरे अमल करोगे तो ये नुकसान होगा, और इसलिए कि इंसान पर इसका बहुत असर पड़ता है नफ़ व ज़रर का के मसले का। और बात अगर उसके जहन के मुताबिक कही जाए, उसके फहम के मुताबिक कही जाए, तो बात बहुत असर करती है। जैसे कि कल्लमुन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम कहा गया कि जैसी समझ है उसके मुताबिक बात कहो। अगर आप जाहिल आदमी के सामने आलिमाना अंदाज में बात कहेंगे तो कुछ उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, या जाहिलों के सामने जिस तरह बात की जाती है आप पढ़े लिखे के सामने करेंगे वो हंसेगा और वो कहेगा क्या इनको कुछ आता नहीं, असर नहीं लेगा। लेकिन मुखातब की जो कैफियत है जहनी और उसकी जो फहम है बात को जिस तरह वो समझता है असर लेता है, उस तरह कहा जाए तो असर पड़ता है। कुरान में इन दोनों पहलुओं का बड़ा लिहाज है। अब इसमें अल्लाह ताला ने कयामत को किस तरह पेश किया है, फरमाया है, उसको जिस नक्शा अल्लाह ताला ने उसका खींचा है, इन नज़लज़ला फरमाया कि इत्तकू रब्बकुम इन नज़लज़ला शयऊन अज़ीम, बड़ी चीज़ है। और फिर उसको उसकी उसका नक्शा अल्लाह ताला ने पेश कर दिया कि यौम तरौना तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ातिन अम्मा अर्ज़ात व तज़हलु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरौन्नास सुकारा वहा हुम बिसुकारा वलकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। यानी जैसे हम आंखों से मंजर दिखा दिया, क्या क्या मंजर होगा जिस वक्त सूर फूकी जाएगी तो उसका क्या कैफियत होगी कि लोग मदहोश होंगे, पागल हो रहे होंगे और मानते जैसे नशे में हैं, हालांकि नशे में नहीं होंगे, वो खतरे को देखकर उनकी हालत ख़राब होगी। बिल्कुल नक्शा खींच दिया है जैसे एक मंजर सामने आ जाए। और फरमाया कि वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, कि असल बात यह है कि अल्लाह की जो पकड़ है, अल्लाह ताला की तरफ से जो अजाब है और जो सज़ा है वो बड़ी सख्त है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला फिर लोगों के नफ्सियात को बताता है कि लोगों का मामला ये है कि बात को जब नहीं समझते पूरी तरह तो बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, और अल्लाह ताला के मामले में भी झगड़ा करते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने पूरा निज़ाम ऐसा बनाया है और कायनात ऐसी बनाई है कि आदमी अगर अगर जानेदार होकर अपने इर्दियत को देखे और सारी चीजों को देखे तो मानने में खुद मजबूर हो जाएगा, उसके जहन उसको मजबूर कर देगा, जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मामले में हुआ कि उन्होंने अपने कौम के जो तसव्वुरात थे मजहबी, चांद की परस्तिश और सूरज सूरज की परस्तिश और वो सितारों की परस्तिश, तो उसमें उन्होंने सोचा गौर किया तो उन्होंने कहा कि ये परस्तिश की लायक तो नहीं मालूम होते, ये इतने बड़े नहीं है कि इनको हम खुदा माने। तो खुद यानी इंसान की अक्ल रहनुमाई करती है कि तो अल्लाह ताला उसका भी नक्शा सामने लाता है कि देखो तुम पहले देखो इंसान की पैदाइश को देखो, किस तरह इंसान पैदा होता है और किन मराहिल से गुजरता है। तो यूँ ही थोड़ी इत्तेफाकन थोड़ी होगा, ये जाहिर है कि एक निज़ाम से हो रहा है, ये कोई कर रहा है ये भी तो हो रहा है, अगर कोई कर ना रहा होता तो इस तरह मुनज़्ज़म तरीके से ये बात नहीं हो सकती थी कि एक कचरा है वो कचरा फिर खून बनता है, खून के बाद वो लोथा बनता है, तो उसके बाद गोश बनता है, फिर आदमी पैदा होता है। यानी उसको अल्लाह ताला तफसील से बयान कर रहा है, यह नक्शा उसका सामने ला रहा है कि देखो तुम दुनिया को देखो, तुम अगर नबी के बाद को तुम उसका नहीं मान रहे हो तो कम से कम खुद गौर करो, अपनी अकल को तो इस्तेमाल करो, देखो ये सारा निज़ाम कैसे चल रहा है, इसके बाद तुम कैसे कह सकते हो कि चलाने वाला कोई नहीं है। अच्छा, और सच्ची बात यह है कि ये सिर्फ यही नहीं कि तुम इसको समझ लो कि निज़ाम कैसे चल रहा है, बल्कि ये समझो कि अंजाम क्या होगा, और वो भी तुम देख रहे हो कि इंसान कोई इंसान भी नहीं है कि जो हमेशा जिंदा रहे, हर इंसान को मौत आती है, और इंसान एक तरीके से पैदा होता है और बढ़ता है और तरक्की करता है, उसके बाद फिर उम्र उस उम्र को पहुंच जाता है जहां बिल्कुल उसको कुछ सुझबुझ नहीं रहती, अकल नहीं रहती, बात को समझता नहीं, बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। ये तुम देख रहे हो और कि हर चीज़ ख़त्म होती है, हर चीज़ जवाल में आती है, तो ये सारा आलम जो तुम्हें नज़र आ रहा है ये भी जवाल आएगा, और ये जवाल में आए कैसे आएगा, उसका नक्शा ये है कि जो कयामत का फूल सूट फूका जाएगा ये सब दुनिया तहवाला हो जाएगी। और फिर वो तहवाला हो जाना इस तरह नहीं है कि कोई चीज़ दूर वाक़ हो जाए और उसको हमसे कोई वास्ते नहीं, सबको सबके ऊपर गुजरेगी, वो सबको वो पेश आएगी, ऐसा कि जो जिस हालत में है उस पागल सा हो जाएगा, मदहोश हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा क्या करें, अकल काम नहीं कर रही होगी और हमल साकित हो जाएंगे, और बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ भूल जाएगी इस बात को कि दूध पिलाना है, बिल्कुल नज़रअंदाज कर देगी, बच्चा मरे जिए उसको हौलनाकी की वजह से उसकी ये कैफियत होगी। तो भाई ये चीज़ें होने वाली हैं, तुम इसको दुनिया का अगर तुम जायज़ा लो तो तुम्हें ये बात मालूम होगी। उसमें अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से लेकर और उसके बुढ़ापे और उसके मौत तक की का नक्शा बयान फरमाया है, और कयामत जिस वक्त सूट होगा जाएगा उस वक्त का नक्शा बयान किया है, बिल्कुल तस्वीर को सामने कर दी है कि तुम्हारे ज़रा भी तुम गौर करो तो ये चीज़ें तुम्हें मुतवज्जे कर सकती हैं। और उसके बाद ये फरमाया कि ये देखो कि किस तरह हम जिंदा को मुर्दे को जिंदा करते हैं, ये तुम्हें नज़र आता है कि ज़मीनें कितनी हैं बेकाश पड़ी हुई हैं, बिल्कुल बंजर हैं, पत्थर की तरह सख्त हैं, उनमें कुछ उगता नहीं है, हम बारिश आती है और उसमें ज़मीन से वो चीज़ें निकलती हैं कि आदमी हैरान रह जाए, जोजिम बहीज बहुत ही रौनक चीज़ें और वो मरक्कब चीज़ें निकलती हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तुम्हें समझ नहीं आता इसके बाद, नहीं समझते इसके बाद कि ये निज़ाम कैसे चल रहा है, ये चीज़ें पैदा हो रही हैं ख़त्म हो रही हैं और वो एक निज़ाम से चल रहा है, उसका पूरा वजाहत के साथ अल्लाह ताला ने उसको पेश किया। ज़ालिक बिअन्नल्लाहु अल-हक़ वअन्नहु युहयी अल-मौता, इस बात से क्या साबित नहीं होता कि ज़ालिक बिअन्नल्लाहु अल-हक़ कि अल्लाह ताला के हक होने को इससे तुम नहीं समझ सकते, इसके बाद और कौन सी दलील तुम्हारे सामने लाई जाए, तुम्हारे मुशाहदे में सब आ रहा है और तुम्हारी अक्ल उसकी रहनुमाई कर रही है कि चीज़ें पैदा हो रही हैं ख़त्म हो रही हैं, पूरे एक निज़ाम से काम चल रहा है, تو اللہ تعالیٰ کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ وہ الہ واحد ہے اور وہی سب کر رہا ہے، تو اس میں سمجھ نہیں آتا، اس کے بجائے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ بھی کہ قیامت آئے گی اور انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس وقت ان کا سامنے لایا جائے گا، تو تمہارے اعمال جو ہیں ان سب کا حساب ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے اور قبر سے لوگ نکالے جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد بھی لوگ بحث کرتے ہیں، بغیر علم ولا ادم ولا کتاب منیر، اور یہ بحث کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اور کوئی دلیل نہیں دے سکتے اور کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے اس شک و شبے کا جو یہ کر رہے ہیں. شک شبے کے لیے بھی تو کوئی دلیل چاہیے، ان کے پاس نہ کوئی کتاب ہے کہ جس میں لکھا ہو کہ ایسا نہیں ہوگا، اسی طرح اور کوئی رہنمائی کرنے والی چیز نہیں ہے کہ جو رہنمائی کرے اس کے شک ہو. ایک حقیقت سامنے آ رہی ہے، اس حقیقت کو رد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اس حقیقت کو کا جس سے انکار ثابت ہوتا ہو. اور اس لیے کہ کیسے کہہ سکتا ہے آدمی کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے؟ جو چیزیں خود بخود ہوتی ہیں اس طرح مرتب ہو سکتی ہیں. اور پھر یہ کہ زمانہ ایک طرح چل رہا ہے اور لوگوں کو روزی بھی حاصل ہو رہی ہے، سب زمین سے پیداوار بھی ہو رہی ہے ہر طرح کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر بحث کرتے ہیں. تو لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بحث کرتے ہیں اس کے بعد بھی کہ بحث کی اس میں گنجائش نہیں. اور فرمایا کہ اور اعراض کرتے ہیں حق بات سے، گمراہی میں پڑھتے ہیں، اور پھر جب پکڑ ہوگی ان کی اور آگ میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اور پھر انسانوں کے ایک دوسری قسم کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دھوکہ دیتے ہیں، جو مانتے ہیں، یعنی زبان سے مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے اور اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، زبان سے مانتے ہیں لیکن تیار رہتے ہیں کہ اس کے انکار کر سکیں، یعنی پوری طرح دل میں ان کے تو اترا نہیں ہے دین. وہ دیکھ کر، ماحول دیکھ کر، ماحول سے مجبور ہو کر وہ اپنے کو مسلمان دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی، لیکن وہ بالکل کنارے کھڑے ہیں علی حرف، جس طرح تو جیسے کوئی کھڑا ہو کہ جب چاہے ادھر چلا جائے جب چاہے ادھر چلا جائے. تو یہ ان کی یہ ہوشیاری ہے کہ وہ سرحد پر رہتے ہیں تاکہ جب ضرورت ہو اور دیکھیں موقع تو واپس چلے جائیں. تو یہ قسم بھی لوگوں کی ہے کہ کفر کی صلاحات بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن کفر اختیار کیے ہوئے ہیں. فرمایا کہ وہ نہ سمیہ عبداللہ علی حرف، لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے کھڑے ہو کر، سڑک پر کھڑے ہو کر. فین اصلاح خیر اسمان نبی، اگر ان کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ اس سے مطمئن رہتے ہیں اس فائدے سے. وہی نصاب تو فتنا تو انقلاب علی وجہ، اگر کوئی ان کے لیے خطرے کی بات پیش آتی ہے تو وہ فوراً چہرہ بدل کر اور وہ چلے جاتے ہیں کفر میں. خسرت دنیا والا آخرہ، یہ وہ ہیں جو دنیا کے لحاظ سے بھی نقصان میں ہیں اور آخرت کے لحاظ سے بھی نقصان ہے. دنیا کے لحاظ سے اس لیے نقصان میں ہیں کہ ان کا اعتبار ختم ہو جائے گا اور پھر وہ سوسائٹی کے اندر پسند نہیں کیے جائیں گے. ظاہر ہے کہاں تک دھوکہ دے سکتا ہے آدمی کہ کبھی ایسا کبھی ایسا، موقع خطرے کا موقع دیکھا تو اپنے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر فائدے کا موقع دیکھا تو بڑھ بڑھ کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. جیسے منافقین کی طرف اشارہ ہے جو عہد مدنی میں منافقین کا جو رویہ تھا. فرمایا کہ خسرت دنیا والآخرہ، یہ وہ ہیں جن کو نہ دنیا ان کی ٹھیک ان کو ٹھیک سے ملے گی اور نہ آخرت ان کو ملے گی، دونوں نقصان ہیں. ذالک الخسران المبین، اور یہ کھلا ہوا نقصان ہے. بھائی جو لوگ خالص کفر میں مبتلا ہیں تو دنیاوی منافع تو ان کو حاصل ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں ہم ان کو دنیا بھرپور طریقے سے دیں گے، بھرپور طریقے سے. लेकिन आखिरत में उनको फिर अजाब में मुबतला होगा। तो ये तो वो है कि इनको ना दुनिया का पूरा फायदा हासिल होगा ना आखिरत का। दुनिया में भी ये जलील होंगे और नाकाबिल एतबार हो जाएंगे, पूरा फायदा नहीं उठा सकते, और आखिरत में उनको मिलेगा नहीं, इसलिए कि ईमान इनका सही नहीं है। फरमाया कि ये खुला हुआ नुकसान है। यलूम इन दूनिल्लाह माला यज़ुरुहु माला यन्फ़ुहु, कि जो लोग ईमान को कबूल नहीं कर रहे हैं उनका जिक्र फरमाता है कि अल्लाह को छोड़कर ये ऐसों को ऐसों से मांगते हैं, ऐसों से दुआ करते हैं और उनसे अपने इबादत करते हैं, ये माला यज़ुरुहु माला यन्फ़ुहु, कि जिनसे न कोई नफ़ा है कोई नुकसान है। पत्थर पत्थर से क्या नफ़ा क्या नुकसान है। तो ये अल्लाह को छोड़कर, यानी अल्लाह जो हर चीज़ पर कादिर है, जिसने सब जमीन बनाई और इंसानों को पैदा करता है और वो सब कर रहा है, देख रहे हैं, उसको तो छोड़ रहे हैं। और इख्तियार किसको करते हैं, जिससे कोई फायदा नुकसान भी नहीं। भाई कम से कम इंसान फायदे और नुकसान को तो देखता है ना, यहाँ ये फायदे नुकसान को नहीं देखते कि ये इनको क्या फायदा पहुँचा सकते हैं। माला इनको जालिक और दलाल बईद, ये खुली, ये बहुत खुली हुई गुमराही है, बहुत दूर तक ये गुमराही है। ये आदमी बिल्कुल आंख बंद कर ले हकायक से कि ऐसे से मांग रहा है कि बच्चा भी समझ सकता है कि इनसे मांगने से कोई फायदा नहीं। ये बहुत खुली हुई और बहुत जबरदस्त गुमराही है। यदूर अमन रू अखरों में नफी, बल्कि बात यह है कि ये उससे मांगते हैं कि जिसका जो नुकसान तो पहुंचा सकता है, कुछ फायदा बिल्कुल नहीं पहुंचा सकता, नुकसान जरूर पहुंचा सकता है, वो उससे चोट लग सकती है, उससे और कोई बात हो सकती है, लेकिन ये फायदा कुछ नहीं होगा। जिसका जरर ज्यादा मुमकिन है उसके नफे से, लबेसल मौला और लबेसल अशीर, के ऐसा आदमी ये बहुत बुरा मौला है, यानी जिसकी मदद ये चाहते हैं, और बहुत बुरा साथी है। इन्नल्लाह युस्किल्लज़ीन आमनु वअमिलु सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अन्हार, और अल्लाह ताला देख रहा है सब और उसी के मुताबिक मामला करेगा। अल्लाह ताला दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए और जो उन्होंने अमल सालिह किया, जन्नत इन तजरी में तहत अनहार, उन जन्नतों में दाखिल करेगा जहाँ नीचे से नहरें बह रही हैं। इन्नल्लाह यफ़लमा युरीद, अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है, और अपने वो जिसको चाहे जन्नत में पहुँचा दे, जिसको चाहे जन्नत से महरूम कर दे, अल्लाह ताला की तौफीक पर है। फरमाया कि मन काना यज़ुन अल्लाह तो लहुल्लाह फिर दुनिया वाल आखिरा वलयमदुद बेसबबी नीला समाय मल अख्ताफ कह माँ यगीर, ये उन लोगों की ज़हनियत बता रहा है कि जो नामुमकिन को मुमकिन बना रहे हैं, वो अल्लाह ताला को नहीं मान रहे हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं करेगा, ये बुत मदद करेंगे, ये दरख्त मदद करेगा, ये फला जानवर मदद करेगा, अल्लाह मदद नहीं करेगा, या अल्लाह की मदद का उनको कोई इम्कान नहीं मालूम होता। अल्लाह की मदद अल्लाह का इनकार करते हैं, हालांकि सब कुछ अल्लाह कर रहा है और सारी तौफीक और मदद अल्लाह की तरफ से होती है, और मगर ये ऐसे लोग हैं बाद कि उन्होंने गुमान कर रखा है, ये ख्याल कर रखा है कि अल्लाह ताला उनकी मदद नहीं करेगा दुनिया में भी आखिरत में भी। जो ऐसा करता है तो वो उसके समझ में जो भी सूरत आती हो अपनी अकल के अकलमंदी दिखाने की, वो करके देख ले, रस्सी तान दे छत में और उस पर चढ़ जाए और चढ़ कर देखे कि वो क्या कर सकता है, अपनी ताकत का अपनी कुव्वत का वो जायज़ा ले ले, खुद क्या कर सकता है। वज़ारा रस्सी बांध कर और उससे लटक के ऊपर चढ़ जाएगा और क्या करेगा, गिरेगा नीचे या आसमान की तरफ जाने की कोशिश करेगा और नीचे गिरेगा। वो देख रहा है कि इंसान कैसे खतरात में रहता है, इंसान को चोट भी लगती है, गिरता भी है, सब कुछ होता है, उसको अपनी इंसान को मालूम है कि उसकी हद क्या है, कहाँ जा सकता, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो मुसीबत को दूर कर सकता है नहीं कर सकता, उसके हुदूद मुकर्रर है। तो वो दिखाए अपने, अपना जौहर दिखाए, अपना कमाल दिखाए, अगर अपने को बड़ा अकलमंद समझता है कि जो कुछ हमने समझा है इससे बेहतर कोई बात नहीं है, तो दिखाए अपनी महारत दिखाए, क्या महारत दिखाएगा, आसमान चढ़ जाए, कूद जाए, तो और फिर देखे कि वो ऐसी हरकत करने के बाद बचता है, क्या उसका नतीजा होगा। उन्होंने कि वो सीढ़ी लगाकर आसमान तक जाए और वहाँ फिर उस सीढ़ी को तोड़ दे और देखे कि उसका उसकी ये उसका ये मकर व फरेब कहाँ तक काम दे सकता है। फलजनदूर हल जुजेबन न कह रू मायदीस के जो उसको गुस्सा आ रहा है इस दावत पर, जो दावत दी जा रही है दीन की, उस गुस्सा आ रहा है और उस पर इनकार ही नहीं बल्कि उसके खिलाफ जुदहद करता है और मक्कारी अख्तियार करता है, तो यह करके देख अपनी ताकत का मुजाहरा खुद करके देखे कि क्या कर सकता है, छत पर चढ़ के कूद जाए और देखे कि उसके कूदने से उसको फायदा पहुंचता है नहीं पहुंचता। तो जो चीज़ उसको गुस्सा दिला रही है, जिसकी वजह से वो दावत का इनकार कर रहा है, उसके खिलाफ लगा हुआ है, जो अहले मक्का कर रहे थे कि परेशान करते थे ईमान वालों को और कुरान मजीद के मुताल्लिक बुरी बुरे बातें कहते थे कि शहर है, कहानत है, हुजूर वसल्लम को बुरे अल्फाज से यानी गुस्सा दिखाते थे। कहा कि गुस्सा दिखा रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ बुला रहे हैं, इसलिए इनको गुस्सा दिखा रहे हैं। तो भाई तुम बहुत अगर अकलमंद हो और बहुत तुम हुनरमंद हो तो दिखाओ अपनी हुनरमंदी, दिखा के देखो, और जो तुम मकर बड़े से बड़ा मकर कर सकते हो करके देखो, तुम्हारा गुस्सा इससे दूर होगा। फरमाया वकज़ालिक अंज़लनाहु आयातिन बय्यिनात वअन्नल्लाहा यहदी मन युरीद। और इसी के साथ ये बात भी है कि हमने तो खुली निशानियाँ नाजिल की हैं, हमने खुली निशानियाँ नाजिल की हैं, जिसको देखते ही आदमी को इत्मीनान हो जाएगा कि जो बात कही जा रही है वो सही है। और अल्लाह यहदी मन युरीद, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है। यानी हिदायत का मसला भी सच्ची बात यह है कि इंसान के मुकम्मल इख्तियार में नहीं है, अल्लाह ताला के तौफीक पर है कि कोई ये ना समझे कि हम अपनी अकल से सही बात जान लेंगे और सही नतीजे तक पहुंच जाएंगे। उसको अल्लाह ताला का सहारा लेना होगा, अल्लाह ताला की तौफीक ही से होता है। जिसको चाहता है गुमराही में पड़ा रहने देता है, बल्कि उसकी गुमराही बढ़ा देता है अगर नाराज हो, और जिसको चाहता है हिदायत देता है। तो इंसान को यानी ईमान वालों को भी ये पूरा अपनी अक्ल पर यकीन नहीं करना चाहिए। इंसान की अक्ल और उसकी समझ महदूद है, वो एक हद तक जाती है, उसके हद के आगे नहीं जाती, और उसको बहरहाल अल्लाह ताला ही का सहारा लेना पड़ेगा बात को सही तौर पर समझने में भी और अपने मुस्तकबिल को बनाने में भी अल्लाह के सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हिदायत और गुमराही अपने हाथ में रखी है, वो और इंसान अपनी अकल को आखिरी चीज़ न समझे। ये ईमान वालों की तरफ भी इससे तवज्जो दिलाई गई, ईमान वालों को भी कि वो भी इस पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला का ये फ़ज़ल है कि उनको ईमान की तौफीक हुई, वरना जिसको तौफीक नहीं हुई तो अपनी सारी अकल और फहम के बावजूद वो इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं, हकायक सामने हैं कि एक बच्चा भी इसको समझ सकता है लेकिन उनकी अकल नहीं आ रहा है। ऐसी चीज़ की इबादत कर रहे हैं जिससे न कोई नुकसान है न फ़ायदा है, बल्कि नुकसान ज़्यादा है फायदे के मुकाबले में। और फरमाया कि और ये إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. اور اس کے وضاحت بھی فرما دی کہ اب یہ مذہبی لحاظ سے کتنے فرقے بن گئے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ان کی بھی کتنی قسمیں بن گئیں. وہ ان میں یہودی بھی ہیں, صابی بھی ہیں, نصارہ بھی ہیں, مجوسی بھی ہیں, یہ سب اللہ کے ماننے کے سلسلے میں انہوں نے اپنے اپنے الگ راستے بنا لیے ہیں. یہ کیا کیوں ایسا ہوا ہے, یہ اشارہ اسی کی طرف ہے کہ اللہ کا سہارا نہیں لیا انہوں نے, اپنی عقل کا سہارا لیا, بس جو دماغ میں آیا اور جو سمجھ میں آیا وہ اسی کو اختیار کر لیا, یعنی اللہ سے مدد نہیں لی تو گمراہ ہو گئے. فرمایا اس طرح مشرک ہیں, یہ سب بڑھ گئے ہیں, سب اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ نئی نئی چیزیں جوڑتے چلے جاتے ہیں. مجوسی کچھ کہتے ہیں اور مشرک کچھ کہتے ہیں, صابئی کچھ کہتے ہیں اور یہودی کچھ کہتے ہیں, سب اپنے اپنے ذہن کی بات کرنے لگے ہیں. سیدھی لائن پر, صراط مستقیم پر نہیں قائم رہے, اس لیے کہ اپنی عقل سے انہوں نے اس میں نقطے نکالے. فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز. یہ کتنے راہ راست سے کتنے بہکے ہیں. ان اللہ علی کل شیء شہید, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, ہر چیز اس کے سامنے ہے اور اس کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا, جیسا کرے گا اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.